हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 41 एंड 42। इस आध्यात्मिक अंग में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा। कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा दीवाय तत् मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरये నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికి. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశాక్తికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీనితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాస్తాశరేషతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతం గదాధారం శివాసదీకార భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరి రామ హరి రామ 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 హరి హరి. ఓకం కురుతు వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరం, యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం. గ్రంథ శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ్ కీ జయ. ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 18 జిస్కా శీర్షక్ హై బ్రహ్మణ బాలక్ ద్వారా మహారాజ్ పరీక్షిత్ కో శాప్. శ్లోక సంఖ్య 41. ఇన్ అత్యంత హీ పవిత్ర శబ్దో కో మేరే సాథ్ సాథ్ ఉచ్చారణ్ కర్నే కా ప్రయాస్ కీజియే. సూత్ గోస్వామి నైమిషారణ్య కి విషయో కో వహ ఘటనా సునా రహే హై జబ్ మహారాజ పరీక్షిత్ वन में आ गए थे और शमीक ऋषि से जल के लिए बहुत याचना करने के उपरांत भी उनको जल न मिला और उसकी बदली में क्रोध करके उन्होंने सर्प जो है मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गर्दन पे रख दिया. और उसके बाद उसके पुत्र ने जब उन्हें श्राप दे दिया कि अब 7 दिन के बाद उस राजा की मृत्यु होने वाली है, तो उनके पिता यानी शमीक ऋषि अपने पुत्र को कह रहे हैं, निशम्य शब्दम अतदर्हम नरेन्द्रम स ब्राह्मणोनात्मजम अभ्यनन्दत अहो बताहो महदत्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह ऊरुर्दमोधृतः. నిశమ్య శబ్దం అతదర్హం నరేంద్రం స బ్రాహ్మణో నాత్మజం అభ్యనందత్ అహో బతాహో మహదత్యతే కృతం అల్పీయసీ ద్రోహ ఊరు దమోధృతః. నిశమ్య శబ్దం అతదర్హం నరేంద్రం స బ్రాహ్మణో నాత్మజం అభ్యనందత్ అహో బతాహో మహదత్యతే కృతం అల్పీయసీ ద్రోహ ఊరుర్దమోదితః. శబ్దాత్ నిశమ్య శబ్దం అతదర్హం నరేంద్రం. నిశమ్య మతలబ్ के सुना, जब उस ब्राह्मण बालक यानी श्रृंगी ने अपने पिताजी को बताया कि मैंने महाराजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मृत्यु का शाप दिया है, तो निशम्य जब निशम्य शब्दम उस शाप के विषय में जब ऋषि ने सुना, तदत अर्हम यानी कभी भी तिरस्कृत नहीं, ये जो नरेंद्र का मतलब होता है नरों में देवेंद्र, यानी जो मनुष्यों के जो राजा हैं, यानी जो राजा होते हैं उनको कभी भी तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। अतदर्हम नरेंद्रम, क्योंकि वो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए उनका कभी भी इस प्रकार से तिरस्कार, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं आया था ना जिसने ऐसा कार्य किया, ये तो महाराजा परीक्षित थे और तुमने उनके साथ ऐसा किया। अहो बताहो महदत्यते कृत। अहो, अहो का मतलब है ऋषि बहुत ज्यादा दुख में ऐसे बोल रहा है। सेकंड लाइन पर सब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदन। सब्राह्मणो, वो ब्राह्मण शमी, नात्मजम, आत्मजम यानी अपने पुत्र को अभ्यनंदत यानी कि उसको कोई कांग्रेट्स नहीं किया कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा, अभ्यनंदक का मतलब उसको बधाई नहीं दी कि बहुत अच्छा काम किया, बल्कि उसको और भी दुख होने लगा। अहो बताओ महदत्यते कृतम, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपने आज बहुत बड़ा अपराध किया है। अल्पीयसी द्रोह, ये जो राजा ने जो द्रोह किया था, द्रोह का मतलब होता है कि अपराध, राजा का जो अपराध था वो बहुत अल्पीयसी, बहुत छोटा था। और उरुर्दमो का मतलब होता है आपने उसको दंड, बहुत दम का मतलब होता है दंड, इतना बड़ा दे दिया आपने इसको। धृता, छोटा सा अपराध था और इतना बड़ा दंड आपने दे दिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया। अनुवाद देखिए, पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह तिरस्कृत नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था, ऋषि ने अपने पुत्र को बधाई नहीं दी, अपितु उल्टे वह यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है किंतु वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कोई त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी राजा की श्रेष्ठता के विषय में बता रहे हैं कि राजा कोई भी कार्य करे तो उसे इतना तिरस्कृत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजा को यह अधिकार होता है कि वो हर अपराधी को दंड दे, लेकिन अगर वो किसी अपराधी को दंड देता है इसका मतलब ये नहीं कि वो भी अपराधी हो जाता है। अब एक तरह से देखा जाए तो शमी मुनि जो थे वो अपराधी थे, उन्होंने राजा का तिरस्कार किया था और इतना बड़ा राजा ने कोई उनको दंड नहीं दिया था, मार नहीं डाला था उनको, सिर्फ राजा तो ये देखना चाहते थे कि कहीं वो ढोंग तो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने ये मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया था। कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, ये स्वयं शमी ऋषि कह रहे हैं। हमें ऐसा लगेगा ना कि हमें राजा की गलती नहीं दिख रही शायद, लेकिन वो स्वयं क्या कह रहे हैं, अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोधृत। अल्पीयसी, अल्प का मतलब है बहुत छोटा सा अपराध था उनका, इतना बड़ा अपराध नहीं था, और उसकी बदली में राजा के ऋषि के पुत्र ने उनको मृत्यु का दंड दे दिया, मरने की सजा। तो यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि राजा कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। एक चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है। यहाँ पर राजा को श्री प्रभुपाद जी एक डॉक्टर से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर कभी, अगर डॉक्टर की कभी इच्छा नहीं होती है कि कोई पेशेंट मरे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर से कोई उपचार गलत हो जाता है मेडिसिंस का, क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो अगर कोई रोगी मर जाता है, लेकिन ऐसे मरने वालों को कभी मारने वालों को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, डॉक्टर को कभी भी फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है। अतः महाराज परीक्षित, जैसे उत्तम एवं पुण्य आत्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए? ये कोई साधारण राजा नहीं थे, ये उत्तम और पुण्य आत्मा राजा थे, तो उनको मृत्यु दंड, ये तो उनके साथ सरासर अन्याय है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का परिशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है, लेकिन राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांति पूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। ये राजा ही का ये जो उनका उनकी शक्ति है, जिसके कारण जो है प्रजा जो वो सारी निर्भय रहती है, शांतिपूर्ण रहती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से तथा पवित्रता के साथ करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी, मानो वे भगवान हो। तो यहाँ पर के कोई ये जो राजा है कोई ऐसा राजा नहीं है जिसका तिरस्कार किया जा सके। ये राजा परीक्षित है और उनके राज्य में सारी जो प्रजा थी वो शांतिपूर्ण निर्भयता से रह रही थी। तो उन सारे जितने भी प्रजा थे उनका भी तो कर्तव्य बनता है ना कि राजा का किस तरह से स्वागत करे, किस तरह से सत्कार करे, किस तरह से आदर करे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते कि उनका प्रजा वैसा ही आदर करती थी जैसा भगवान। यही वेदों का आदेश है, राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जैसे यहाँ पर कहा गया, निशम्य शब्दम अतदरहम नरेंद्रम, ये राजा है जो देवताओं मतलब देवताओं के बराबर है, नरेंद्र मनुष्यों में देवताओं के बराबर है। तो फिर महाराजा परीक्षित जैसे राजा को किस तरह से एक अनुभवहीन गर्वित ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो, उसको अधिकार नहीं था महाराजा परीक्षित को श्राप देने का। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते, चूंकि शमिक ऋषि एक अनुभवी उत्तम ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्य का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा शाप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराजा परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए? राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्यु दंड देना सचमुच ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था, इसीलिए शमी ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक नंबर 42 मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। नवै निभिरारदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्कबुद्धि यत् तेजसादुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतु भया प्रजा न वै निभिर्नारदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्कबुद्धे यत्तेजसादुर् विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतु भया प्रजा न वै निभिर्नारदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्कबुद्धि यत्तेजसादुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतु भया प्रजा। शब्दात् न वै, न मतलब कभी नहीं, वै मतलब सचमुच कभी में कभी भी नहीं, निर्भीर नरदेवम, निर्भी मतलब किसी मनुष्य द्वारा, नरदेवम यानी मनुष्य रूपी देवता को, पराख्यम यानी वो दिव्य है, जो राजा होते हैं नरदेव होते हैं वो दिव्य होते हैं, दिव्य स्थिति पर होते हैं। तो साधारण मनुष्य को कभी भी उसको आगे सम्मातुम यानी समान बताया जाता, मतलब राजा को साधारण मनुष्यों की सम्मान नहीं बताया जाता है। सम्मा तो मतलब सम्मान बताना, अरहसी यानी तेज से अविपक्क, अनुभव विहीन या अपौर, बुद्धि यानी बुद्धि, यत तेजसा दुर विषहेण गुप्ता, यत जिसका तेजसा तेज से दुर्विषहेण यानी अलंघ्य गुप्ता सुरक्षित, यानी उन्हीं के तेज के कृपा से तो हम सब सुरक्षित होते हैं। जो राजा होते हैं, जो कुशल राजा होते हैं, वही तो हम सब की सुरक्षा का कारण होते हैं। विंदन्ति भद्राण्य कुतो भया प्रजा, विंदन्ति यानी भोग करता है भद्राणी सारी समृद्धि का, अकुतः भया यानी पूर्णतया सुरक्षित या निर्भय प्रजा यानी जनता। अनुवाद देखिए, हे बालक तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों के में सर्वोत्तम है और भगवान के तुल्य होता है। इसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति कीरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। आज अत्यंत ही सुंदर शिक्षा मिल रही है हमें इन श्लोकों में, कि जैसे ही शमीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया है, तो ऐसा नहीं कि वो महाराजा परीक्षित के इस श्राप देने पर अपने पुत्र को बहुत आलिंगन करता, हाँ बेटा तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया आज तो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो अपने पुत्रों की, अपनी संतान की गलती पर, और भी अगर कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उनके माता पिता की या कुछ भी ऐसा करता है, बड़ी सम्मानित व्यक्ति भी होगा ना, जैसे दादा दादी या कुछ भी कोई बड़े होते हैं, वो कभी कुछ बोल देते हैं तो पुत्र जाके बोल के आता है ना, उनको दो खड़ी खोटी सुना के आता है, तो माँ बोलती है बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, ऐसा ही करना चाहिए, इनको इसी तरह से सबक सिखाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। मतलब हम अपनी संतान को किस तरह से गलत राय दे रहे होते हैं, गलत शिक्षा दे रहे होते हैं, हमको खुद भी इस बात का अनुभव नहीं हो रहा होता है कि कल वही कार्य हमारे साथ होने वाला है। आज यहाँ पर शमीक ऋषि के पुत्र, जो कि बहुत बड़े तेजस्वी ब्राह्मण के पुत्र होने के कारण बहुत तेज था, लेकिन उनके अंदर इतनी अज्ञानता थी, इतनी अनुभवहीनता थी, अपरिपक्व अप्रौढ़ था, और उसके बावजूद भी उसने महाराजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जैसे शमीक मुनि को पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ। निशम्य शब्दम अत हर्द नरेदम, राजा को इतने नरेंद्रम, इतने अच्छे राजा को जो कि अपनी प्रजा को इतने संस्कार दे रहा था, प्रजा की उनके कारण बहुत ज्यादा सुखी थी, प्रजा को हर प्रकार का सुख उनके, हर प्रकार की संरक्षण उनके प्राप्त, उनके द्वारा प्राप्त थी। जैसे कि हमने पढ़ा कि महाराजा परीक्षित जब गए थे भ्रमण करने के लिए, अपने सारी प्रजा का जितने भी देश थे उनका भ्रमण, तो एक भी अपराधी नहीं मिला उनको। पूरे उनके राज्य में सब कुछ कुशलता के साथ, सारे लोगों को जस्टिस मिल रहा था, सब लोगों को संरक्षण प्राप्त था, सारे लोगों को पृथ्वी जो है वो उतना अन्न देती थी जितनी की आवश्यकता होती थी, इंद्र जो है उतनी वर्षा करता था जितनी की आवश्यकता, जब जितनी वर्षा की आवश्यकता होती थी, जब जितने अन्न और फल की आवश्यकता होती थी, हर एक वस्तु जो है वो संतुलित समय पर, संतुलित क्वांटिटी में प्राप्त हो रही थी, सारे लोग संतुष्ट थे, कारण सिर्फ एक सुर, ये अच्छे राजा, और ये केवल अच्छे राजा नहीं थे, ये तो भगवान के भक्त थे कहा जाता है। महाराज परीक्षित के अंदर इतने गुण थे कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वो भक्त थे, प्रहलाद की तरह के वो भक्त थे। महाराजा इक्ष्वाकु की तरह वो एक बहुत ही समृद्ध राजा थे। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, ना ही वो राजा थे बल्कि राजर्षि थे। ऐसे महान राजा के को जब उनके पुत्र ने श्राप दे दिया ना, अगर उस समय जब महाराजा परीक्षित को अभी पता चलेगा ना तो श्रोधारी करेंगे। अगर वो चाहते ना तो उसी समय सारी ये जो तक्षक सर्प की जाति है ना उसको भस्म कर सकते थे, इतना तेज था महाराजा परीक्षित के अंदर। परंतु महाराजा परीक्षित जो है वो भगवान के भक्त होने के कारण वृक्ष की तरह सहनशील थे और घास के तिनके की तरह विनम्र। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी महाराजा परीक्षित के अंदर बहुत ही सुंदर गुण थे। और जब इस शमीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने निशम्य शाप्तम उनको एक शाप दे दिया है, तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। और सब्राह्मणो नात्मजम अभ्यनंदन, उन्होंने अपने पुत्र को कोई अभिनंदन नहीं दिया कि आप बेटा शाबाश बहुत बड़ा काम करके आए हो। उनको कांग्रेस नहीं किया कि तुमने तो आज बहुत बड़ा काम कर दिया, इतने बड़े राजा को 7 दिन में मरने का शाप दे दिया, वेरी गुड। नहीं, उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने अहो बताहो महदत्य के ते कृतम, तो और भी अपने पुत्र को कहा तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया बेटा, ये तो बहुत बड़ा पाप है, इतनी छोटी अल्पीयसी द्रोह उरुर्तमोद्रित, इतना छोटा सा अपराध, इतनी छोटी से अपराध की इतनी बड़ी सजा, तुम्हें क्या अधिकार था महाराजा परीक्षित को इतना बड़ा श्राप देने का। वास्तव में बस तो यहाँ पर जो शमीक ऋषि हैं वो अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि पाप तुम उस राजा ने नहीं किया। यहाँ पर एक बार भी शमीक ऋषि ने ये नहीं कहा है कि हाँ राजा से भी गलती हो गई परंतु तुमने भी उसके साथ ऐसा, लेकिन उससे भी गलती, बोले ये तो इतना छोटी सी छोटा सा अपराध, अल्पीयसी, इतनी छोटी सी बात है, ये तो कोई बड़ा अपराध तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्षुद्र छोटा सा अपराध है, और इसके बदले में तुमने इतना बड़ा उनको श्राप कैसे दे दिया। वास्तव में हम जो जो अपराध करते ना तो ऐसे बताते हैं, अजामिल को जब उनके यमदूत लेने आए थे तो जब विष्णु दूतों ने उनको अजामिल के प्राण लेकर जाने नहीं दिए थे, तब विष्णु दूत यमदूतों से जब वार्ता करते हैं तब विष्णु दूत यमदूतों से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, कैसे मतलब आप अपराधों को कैसे समझते हो कि ये अपराध करता है, कैसे पता चलता है आपको, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है कि ये अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है। तब यमदूत बताते हैं कि क्योंकि विभिन्न प्रकार के 12 आई विटनेस है हमारे, हम जो भी अपराध कर रहे होते हैं ना तो सब देख रहे होते हैं, सूर्य देख रहा होता है जब ये दिन में अपराध करें, तो रात में करें तो चंद्रमा देख रहा होता है, यदि खुले आसमान के सामने ना करें अंदर रूम में जाके करें तो 10 दिशाएं देख रही होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और ये जो 4 कॉर्नर है वो और ऊपर और नीचे, ये सब 10 दिशाएं हमारे अपराध को देख रहे होते हैं। जल वरुण देव हमारे अपराध को देख रहे होते हैं, अग्नि देव हमारे अपराध को देख रहे होते हैं, अश्वनी कुमार जो श्वास के देवता है वो हमारे अपराध को देख रहे होते हैं। और उन सब की बात छोड़िए प्रभु, वो जो परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उपदीक्षा अनुमता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहेस्मिन् पुरुषतः, वो परमात्मा के स्वरूप में भगवान हमारे हृदय में बैठकर उन सारे अपराधों के आई विटनेस बने हुए हैं, देख रहे हैं वो सब। और जब यमदूत पकड़ के जाते हैं तो उन सारे अपराधों की सजा हमें नरक में भुगतनी पड़ती है, परंतु जो राजा होते हैं उनके द्वारा यदि हमारे अपराधों का दंड हमें मिल जाता है तो फिर हमें इन उन अपराधों के लिए नरक में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि राजा ने जो सुनवाई कर ली है तो वो सारी दिशाएं, वो सारे जो विटनेस हैं वो कट कर देते हैं अपना, वो वाला अपराध जिसके कारण, जिसकी बदली में राजा ने हमें अपराध का दंड दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार होता है उस राजा का कि इस भौतिक जगत में ही अपराध का दंड मिल जाता है, फिर नरक में नहीं जाना पड़ता। क्योंकि इस जगत में जो दंड मिलता है वो बहुत थोड़ा होता है, नरक में उसी अपराध का दंड जो है वो बहुत ज्यादा गुना बन के मिलता है, बहुत ज्यादा खतरनाक मिलता है। इसीलिए राजा का जो ये होता है ना, जिसके कारण जो कानून के तहत जो हमें सजा मिलती है ना, वो समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो रहा है जो राजा दे रहे होते हैं सजा। लेकिन राजा से यदि कोई गलती हो जाती है, अब देखो ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी राजा आके बैठ जाए और वो उसके हमें ना खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, नहीं। वेदों में दोनों तरफ के जो बात है ना वो बताई जाती है कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं और क्या अधिकार होते हैं, प्लस जो प्रजा होती है उनके क्या कर्तव्य होते हैं और क्या अधिकार होते हैं। अब राजा जो परीक्षित महाराज थे वो अपने सारे अधिकार, जितने भी उनके कर्तव्य थे उनको वो पूरा कर रहा था, सारे कर्तव्यों को पूरे कर रहे थे। महाराजा परीक्षित ऐसे अपने राज्य को इतने सुंदर तरीके से चला रहे थे कि जो जो कर्तव्य एक राजा के होते हैं अपनी प्रजा के प्रति, वो सारे के सारे पूरे कर रहे थे। तभी तो उनके राज्य में हर एक जीव सुरक्षित था, हर एक जीव संतुष्ट था। तो महाराजा परीक्षित ने अपने कर्तव्य पूरे करने में कभी कोई कोताही नहीं की, तो उनको उनका अधिकार भी तो मिलना चाहिए था ना। जो राजा का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं उन्हें राजा का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पर जब प्रजा को उनका अधिकार मिल रहा है, हर एक वस्तु हर एक तरह से उनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है राजा के कारण, तो उनको भी तो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था। यानी ये कर्तव्य और अधिकार, ये जब राजा अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, अभी यहाँ पर क्या होता है, सब उल्टा पुल्टा हो गया है। ना राजा अपने कर्तव्य पूरे करते हैं और ना प्रजा उनके अधिकार को देता है। लेकिन ये उस समय की बात है जब महाराजा परीक्षित अभी वो कलयुग जैसे महाभयंकर आपदा को भी अपने राज्य में घुसने नहीं दे रहे थे, ऐसे महान पवित्र राजा। तो वो जब अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो प्रजा को भी चाहिए ना उनके अधिकार को दे और अपने कर्तव्यों को पूरा करें। लेकिन प्रजा ये तो चाहती थी कि महाराजा परीक्षित, ये जैसे श्रृंगी ऋषि, ये तो चाह रहे थे कि महाराजा परीक्षित तो अपना कर्तव्य पूरा करे, वो कुत्तों की तरह हमारे घर की रखवाली करे, बाकी हम उनको कभी भी अपने घर में आकर कुछ खाने पीने के लिए ना दे, ऐसा तो कभी भी सत्कार नहीं। दोनों तरफ से वैदिक संस्कृति में हर एक जीव को उसके अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और दूसरा, वैदिक संस्कृति में कोई इंडिपेंडेंट नहीं है कि कोई अपनी तरफ से ही कोई फैसला ले ले, नहीं। बच्चे जो होते हैं उनको माता पिता के निर्देशन के अनुसार, शिष्य को अपने गुरु के अनुसार और राजा को ब्राह्मणों के अनुसार, सब मतलब जो भी निर्णय ले रहे होते हैं तो वो अपने से वृद्ध के अनुसार ले रहे होते हैं। लेकिन ये शमी ऋषि के पुत्र जो हैं, वो बगैर किसी निर्देशन के स्वयं ही इतना बड़ा निर्णय ले गए। जैसे आजकल बच्चे जो है ना वो अपने माता पिता से कुछ नहीं पूछते, अपने ही निर्णय स्वयं ले लेते हैं और बाद में उनको बहुत पछताना भी पड़ता है। वास्तव में हमें जब किसी न किसी के ऊपर, जैसे ऊपर हमारे कोई होता है ना, किसी के संरक्षण में बैठकर जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सुरक्षित निर्णय होता है, क्योंकि हमें पता होता है माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, उसके अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सदैव जीत मतलब अच्छा गुजरता, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन हम खुद से जब कोई निर्णय लेते हैं तो वो उसके कारण हमारे ऊपर आपदा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अभी जो लीडर होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, राजा होते हैं या जो नियमित होते हैं, वो हमेशा से लोगों के क्रिटिसाइज का विषय बनते हैं। हाँ, उनको भले ही वो कितनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हों, लेकिन फिर भी कभी कभी हमेशा उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। देखा जाए तो जो हेड होते हैं ना, लीडर्स होते हैं, उनको सदैव भर्त्सना की जाती है। जैसे ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी कितना अच्छे तरीके से संसार का सृजन करते हैं, लोगों को, सारे लोगों को अलग अलग योनियों में डालते हैं, मनुष्यों को बनाते हैं, हर एक मनुष्य को इतने अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, लेकिन उनकी भी भर्त्सना की जाती है, उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। किसके द्वारा? संसार में जो सबसे बड़ी भक्त है, मतलब उनसे ज्यादा बड़ा भक्त कोई नहीं, गोपियां, वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं आपने सही क्रिएशन नहीं किए, आपने ये जो मनुष्य की आकृति बनाई ना वो सही नहीं बनाई, आपको पलके नहीं बनानी चाहिए थी, ये पलके जो है वो कृष्ण के दर्शन में बाधा बनती है, आपको तो ब्रह्मा जी बनाना नहीं आया कि किस तरह से नेत्र बनाने सही, ब्रह्मा जी को भी बोल दिया कि तुमको सही तरह से क्रिएशन करना। यहाँ पर साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब संसार में आते हैं तो उनको भी एक धोबी के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुम ये, मैं कोई श्री राम थोड़े हूँ जो अपनी पत्नी इतने दिन तक राक्षसों के पास रहकर आई और उसको घर पे, मेरे अंदर वो प्रभु श्री राम जैसा तेज नहीं है, मैं उनकी तरह निर्णय नहीं ले सकता, मैं तुम्हें अपने घर पे नहीं रह सकता, मैं कोई श्री राम थोड़े हूँ। यानी कि श्री राम जो है वो भी तिरस्कृत होते हैं जब वो राजा बनते हैं, और आज ये महाराजा परीक्षित जो कि इतनी सुंदर व्यवस्था चला रहे थे अपने राज्य की, वो भी एक ब्राह्मण बालक द्वारा तिरस्कृत हो रहे हैं। तो उनके पुत्र बोल, उनके पुत्र को शमी ऋषि बोलते हैं, अहो बतासो अहमत्यधिकृत, आपने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत छोटा सा अपराध था, राजा की इतनी छोटी सी बात, अल्पीयसी द्रोह उरुर्धमोदृत, इतनी छोटी सी बात का तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया। मतलब महाराजा परीक्षित के अपराध को तो शमिक मुनि ने बिल्कुल निगरणीय कहा कि बिल्कुल ये तो इतना छोटी सी बात है और तुमने उसके बदले में उनको मृत्यु दंड दे दिया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। क्योंकि केवल इतने अच्छे राजा के कारण ही हम सब इतनी निर्भयता से अपने कार्य कर रहे हैं, इतने शांतिपूर्वक और सुख से रह रहे हैं, तो ये कोई साधारण राजा नहीं, ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका हमें हृदय से सम्मान करना चाहिए था। मेरी गलती है जो उनको यथाचित उनका सत्कार नहीं कर सका, तो बल्कि मुझे अपराधी तो मैं हूँ, उनको तो इस बात की सजा मिलनी ही नहीं चाहिए थी। तो शमिक मुनि जो है वो बहुत पश्चाताप कर रहे थे, उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मेरे पुत्र ने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो महाराजा परीक्षित को एक सामान्य मनुष्य समझकर कि अगर कोई सामान्य मनुष्य ऐसी गलती करता तो मैं भी वो दंड के लिए उपयुक्त था, परंतु राजा का अपराध इतना छोटा था, ये राजा थे और राजा को तो वैसे ही शाप नहीं देना चाहिए, राजा के दंड, राजा के अपराध का दंड देने का अधिकार उसको, उस ब्राह्मण के बेटे को नहीं था, क्योंकि राजा के अपराध का दंड या तो उसे भगवान देता है, या जो बहुत बड़े मतलब जो विवेकी ब्राह्मण होते हैं ना, जो उनके गुरुजन होते हैं, वो उनको दंड दे सकते हैं, परंतु कोई भी बच्चा उठाकर उनको शाप नहीं दे सकता, भले उसके अंदर तेज होता है फिर भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, नवै निर्भीर नर देवम पराख्यम, ये नर देवम, ये तो नर का मतलब होता है मनुष्य और देवम का मतलब होता है देवता, मनुष्य के रूप में देवता है महाराजा परीक्षित, और तुमने उसको सम्मा तुमरहस्य विपक्क बुद्धि, तुमने अपनी अविपक्क बुद्धि यानी कि अनुभवहीन अप्रौढ़ बुद्धि के कारण उनको साधारण मनुष्य समझकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्योंकि आज हम जो सुरक्षित हैं अच्छे तरीके से रहा, यत तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता, गुप्ता का मतलब आज हम जो इतने अच्छे तरीके सुरक्षित जीवन गुजार रहे हैं वो सब उनके तेज के कारण तो है। विंदन्ति भद्राण्य कुतो भया प्रजा, विंदन्ति यानी वो महाराज जो होते हैं वो टैक्स लेते हैं ना, कोई भी टैक्स ले रहे होते हैं तो जो शुद्ध राजर्षि होते हैं वो टैक्स के लिए एक टक्का भी अपना खुद के लिए नहीं यूज करते, जो भी राज्य से उसको टैक्स मिलता है वो सब प्रजा के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, तो वो कभी भी अपने भोग के लिए नहीं, खुद तो वो सारा दिन ना प्रजा को खुश करने के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। तो विंदंती भद्राणी अकुतो भया प्रजा, सब कुछ करते हैं ताकि प्रजा सुरक्षित रहे, और प्रजा ऐसी कि ऐसे राजा को श्राप दे दिया मरने का, वो भी 7 दिन के अंदर, तो इसके कारण ये शमी ऋषि बहुत ज्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं। इसे हमें सीखना चाहिए कि यदि हमारी संतान भी कभी कोई गलती करे तो उनको कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि आपने, मतलब उनको हमेशा बताना चाहिए कि बहुत बड़ा अपराध है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। कुछ माताएं होती हैं अपने जिनकी बेटियों की शादी हो जाती है, फिर वो अपने पति का कोई अपराध करके आती हैं, तो फिर पता है उनकी माताएं बताती हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो ऐसा ही है, इसके साथ ऐसा ही कर, तुम जाना ही नहीं, अभी हमारे घर पे रुक जाओ, यहां पर बैठो, और है ना अभी मैं तुमको उसके साथ डाइवोर्स करवाती हूँ। नहीं, हमें बताना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपके पति के साथ आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपके सास ससुर के साथ ऐसा, कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर्स के साथ जो है ना वो गलत व्यवहार करके आते हैं और बताते हैं आज मम्मी मैंने ऐसा अपने इस टीचर को मजा चखा, ये कर, तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं ये नहीं है, आप में हम आपका इस अपराध में साथ नहीं देंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बचपन से ही बच्चों को हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो गलत कार्य ना करें, और वो तभी संभव है जब हमें शास्त्रों के आदेशों के विषय में पता होगा, जब हमें पता होगा कि शास्त्रों में किसका क्या कर्तव्य है, किसका क्या अधिकार है, उसके अनुसार ही हमें जीवन गुजारना चाहिए और अपनी संतान को भी वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए, ताकि हम एक सही जीवन, सही जो मनुष्य जीवन है उसका उपयोग कर सकें और धीरे धीरे प्रगति करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।